या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 504।
संगत करो दीनदार की और जा बैठो उसी के पास, हींग के बासन में, हींग की फूलों के बासन में, फूलों की बात, जो चाहो खुशहाली दिल की, तो नित रहो खुश गुलजार, जो भाई बिरादर दीन के उनका नित करो दीदार। मौलाना हाजिर इमाम से सलवात, दीनदारों, दुनिया के अंदर इंसान जब जन्म लेता है तो उस आदमी को सबसे पहले अपनी माँ की संगत मिलती है। इंसान अगर उसके भाई बहन, कुटुम्ब कबीला, बाप वगैरह, उसकी संगत उसको मिलती है और अपनी माँ से, बाप से, बहन भाई से, कुटुम्ब से वो चीजें सीखता है जो चीजें उस आदमी के सारे जीवन में इस तरह से टूट टूट के भरी जाती हैं कि फिर जिंदगी में उनका मिटना मुश्किल है, अदल बदल हो सकता है। संगत इतनी पावरफुल चीज है। एक माता को जंगल में बच्चा हुआ, अफसोस ये कि बच्चे का जन्म हुआ और मां मर गई, बिल्कुल अकेली थी, बच्चा बेहोश पड़ा है, भूख की वजह से रो रो के थक गया, बेहोश हो गया। इस जंगल के अंदर चिंपांजी रहते थे, चिंपांजी बंदरों का एक टोड़ा निकला, चिंपांजी और आदमी में बहुत थोड़ा फर्क है। जब ये लोग नजदीक आए, मां मरी हुई थी, बच्चा होश में आ चुका था और रो रहा था। एक चिंपांजी मादा ने, फीमेल चिंपांजी ने इस बच्चे को उठा लिया। खुदा की कुदरत, इसका भी एक छोटा बच्चा था और इस चिंपांजी ने, फीमेल चिंपांजी ने इस बच्चे को सबसे पहली धावन पिलाई। बच्चा बड़ा हुआ, भले आदमी का बच्चा था लेकिन इसकी संगत जो थी वो चिंपांजी बंदरों की थी। आदमी की तरह इसने कोई भी बात, बोलना चलना कुछ भी नहीं सीखा। जैसे बंदर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, नाचते कूदते हैं, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से 18 साल का जवान हो गया, बंदरों के साथ बंदर हो गया। शरीर पे इतने बाल तो ना निकले लेकिन दाढ़ी, मूछ, सिर के बाल ऐसे हो गए कि ना ये बंदर लगे ना ये आदमी लगे। 18 साल की जब इसकी उम्र हुई, बंदरों के एक टोड़े के पीछे आदमियों की शिकारी पार्टी पड़ी। शिकारियों में से एक शिकारी ने देखा कि इनमें एक बंदर आदमी की तरह स्ट्रेट चलता है, उसके शरीर पर बाल भी नहीं। दूरबीन लगा के अच्छी तरह से जब स्टडी की तो पता लगा कि ये कोई अजीब जानवर है, वो ये मालूम नहीं कर सके कि ये आदमी का बच्चा है। उन्होंने ट्रैप लगाए और आखिर ट्रैप के अंदर इसको पकड़ा। ट्रैप में पकड़ के एक मेडिकल कॉलेज में पिंजरा बना के इसको स्टडी करने लगे। फिर पता लगा कि ये आदमी का बच्चा है, मगर कोई वजह से इन बंदरों के साथ चला गया है। बड़ी तलाश तपाश के बाद उसकी हकीकत का पता लगा। उसके माता पिता जो थे दूसरे मिले, मां तो मर गई थी, उनके से पता लगा कि जंगल के अंदर हामिला औरत थी, वो हमको मरी हुई मिली, लेकिन बच्चे का क्या हुआ उसका हमें मालूम नहीं था। हम ऐसा समझे कि बच्चा कौला बच्चा है, कौला गोश्त है, तो कोई जंगल का जानवर उसको खा गया होगा। मां की लाश मिली, उसको उन्होंने ट्रेन किया। आहिस्ता 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 बोलना सीख ना सका, मगर उसमें समझदारी पैदा हो गई। एक इंसान का बच्चा अगर बांदरों में चला जाए तो वो बांदर बन जाता है। अगर इंसान का बच्चा डाकुओं में चला जाए तो वो डाकू बनता है। चोरों में संगत में बैठ जाए तो चोर बनता है। प्रोफेसरों की संगत में आ जाए इलम वाला बनता है। आलिमों और फकीरों की संगत में आए तो दीन वाला बनता है। जैसे इंसान की संगत सोबत होती है, ऐसा आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है। मौला मुर्तजा अली फरमाते हैं कि तुम हमेशा दीनदार की संगत करो, ईमानदार आदमी होवे, दीनदार होवे, मोमन होवे, खुदा को चाहने वाला होवे, उसकी संगत में बैठो तो दगा नहीं करेगा, फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, उसकी संगत में हमेशा फायदा रहेगा। मौला मुर्तजा अली दाखला देते हैं कि एक बासन में हींग डाल दो, ढकना बंद करके एक दो दिन रखो, दूसरे बासन में फूल डालो और फिर दोनों को खाली करके सूंघो, तो खाली बासन में से भी हींग वाले बासन में से हींग की बात आएगी, फूलों वाले बासन में से फूलों की बात आएगी। अनवार सहेली नाम की एक फारसी चौपड़ी है, इसके अंदर एक छोटी सी हिकायत लिखी है। आपको याद है मैं आपके कड़िया को के अंदर आके मैं ऐसी बहुत सी हिकायतें बोला करता हूँ, और ये अनवार सहेली में से ऐसी और कई छोटी छोटी मैंने वार्ताएं आपको सुनाई हैं। एक छोटी सी वार्ता है संगत के ऊपर, कि संगत करने से इंसान के ऊपर अगर संगत बुरी है तो नुकसान हो जाता है। एक सुंदर था चूहा, एक काछबे के साथ उसकी दोस्ती हुई। काछबा पानी में रह रहे, इंग्लिश में काछबे को टॉर्टोइस कहते हैं, कछुआ पानी में रह रहे, हम उर्दू में कछुआ कहते हैं, और चूहा सुंदर बाहर रहता है, वो पानी में जावे तो मर जावे, लेकिन जो कछुआ है वो पानी में से निकल के जमीन के ऊपर भी चल सकता है। तो वो पानी में रहता था, नदी के किनारे पे एक झाड़ था, उस झाड़ के अंदर अपना घर बना के ये उंदर भी उधर रहता था। कछुआ पानी में से निकले, ये झाड़ के उस दर में से निकले, दोनों बैठ के बातें करें, दोस्ती संगत चलने लगी। एक दिन बड़ी देर हुई, चूहा अपने दोस्त के पास बैठा रहा, थोड़ी देर हुई तो इसका छोटा भाई इसको बुलाने आया, कोई दूसरा उंदर आया, इसने रजा ली अपने दोस्त की कि मेरी माँ मुझे बुलाती है। घर पहुंचा, माँ ने कहा कि मुझे तो आज पता लगा कि तूने कछुए की दोस्ती की है। हाँ माँ, देख भले तुझको इसमें नफा नुकसान होवे के ना होवे वो तेरी किस्मत की बात है, लेकिन दोस्ती हमेशा अपने जैसों की करना, जो अपने जैसे नहीं अपने सर्कल में से बाहर निकल के तुम दोस्ती करोगे उसमें तकलीफ हो जाएगी। इसी तरह से उधर वो कछुए की माँ ने इसको कहा, क्यों आज लेट हुए? कहने लगा, अम्मा मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास किनारे पे बैठा था। कौन दोस्त है? एक चूहा। अरे तूने गजब किया, चूहे की दोस्ती और तेरे साथ? वो पानी में आ नहीं सकता, तू उसके घर जा नहीं सकता, वो तेरे घर आ नहीं सकता, ये कैसी दोस्ती? वो छोटी सी खुद में रहता है, ऐसे छोटे से दर के अंदर तू जा नहीं सकता, वो पानी में आ नहीं सकता। कहते हैं, हमारी दोस्ती तो ऐसी है, किनारे पे बैठ के गप्पे मारते हैं, थोड़ी पिकनिक करते हैं, और अपने घर में अपने घर। कहने लगी, ये गजब की बात है, हमेशा दोस्ती अपने जैसे से करो बेटा। लेकिन जवानी है ना, बचपना और जवानी समझदारी के दुश्मन, और समझदारी बचपन में तो होती नहीं, नवी नवी जवानी होती है तो उसको ताकत का घमंड होता है। नवे जवानों को ये ख्याल होता है कि हमारे जैसा कोई अकल वाला नहीं, वो बाप को दादा को वडीलों को बुद्धू समझते हैं, और सबसे बड़े बुद्धू खुद होते हैं, क्योंकि उनको दुनिया के जीवन का कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए उन्हें मालूम नहीं होता। वो वडीलों की जो बातें होती हैं नहीं समझते, जब तक कि वो मार खावे और खुद वडील बने, फिर वडीलों को याद करते हैं, तो वडील तो कब्रस्तान में पड़े होते हैं। जब समझ आती है तब तक तो 60-70 का वडील तो नीचे जमीन से हो जाते हैं। इन्होंने भी अपनी अपनी माँ की बात मानी नहीं। एक दिन चूहे को कुछ काम हुआ, तो कोई नवी चीज लेके आया किधर से, उसका बड़ा दिल चाहा कि मैं अपने दोस्त को खिलाऊं, लेकिन करे क्या, पानी में खुद जा नहीं सकता, अब बुलावे कैसे? किनारे के ऊपर खड़े रह के बड़ा शोर मचाया उसने, लेकिन उसने सुना ही नहीं। आखिर बेचारा बैठा रहा। शाम के नजदीक कछुआ बाहर आया, बड़ा बिगड़ा हुआ था चूहा उसके ऊपर। कहते, आज तेरे को मैंने इतनी आवाजें लगाई, कहते मुंगस आवाज लगाई, मुझे थोड़ा नीचे पाताल के अंदर तेरी आवाज आ रही, और उंदर की आवाज कितनी बड़ी। चलो खैर, थोड़ा गिला शिकवा हुआ, रूठ गया, ठीक हुआ, बातें हुई। उंदर ने सोचा, यार तो रास्ता निकालना चाहिए, क्या रास्ता निकाले, मैं तेरे को बुलाना चाहूं तो बुला सकूं, तू मुझे बुलाना चाहे बुला सके। बोले, अच्छा हम टेलीफोन लगाएं। टेलीफोन कैसे लगाओगे? एक बहुत बड़ी रस्सी कहीं से ढूंढ लाया, डोरी ले आया उंदर। कहता, ये डोरी तू अपने एक पांव के साथ बांध ले, एक छेड़ा, और दूसरा छेड़ा मैं अपने पांव के साथ बांध लेता हूं। तो पांव में तो फिट ना आया, क्योंकि काचबे का पांव जाड़ा होता है, फिट हो गया, इसके पांव में से निकल जावे, चलने में तकलीफ होवे, तो उंदर ने गले में उसका एक छेड़ा बांध लिया। जब ही एक दूसरे को जरूरत पड़े तो वो रस्सी को डोरी को खींचे तो वो पानी में से बाहर आ जाए, अपने घर से बाहर आ जाए। बड़े राजी के ये नवा सिस्टम बहुत अच्छा है। एक दिन बड़े जोर की बारिश हुई, बारिश ऐसी हुई ठंडी बढ़ गई, कछुआ तो नीचे, क्योंकि पानी नीचे से गर्म होता है, वो एकदम पानी की तह में बैठा रहा, और ये अपने दर में घुसा रहा, दर में भी पानी आ गया था, बड़ा परेशान हुआ। थोड़ी देर के बाद जब इस तड़का निकला, सूरज निकला, तो उंदर को ऐसा हुआ, चलो ना आज मैं थोड़ी सी हवा खाऊं, थोड़ी धूप खाऊं, जरा बदन में गर्मी आवे। तो वो निकल के तड़के में किनारे के ऊपर बैठा, तड़का ऐसा मजे का लगा, उंदर की आंखें बंद हो गई, मजे से बैठा था, डोरी गले में बंधी हुई है। ऊपर से एक चील ने देखा, चमड़ी ने, उसने मारी एक जरूर डाइव मार के इसको अपने पंजों में पकड़ के ले गई। चमड़ी इसको पकड़ के ले गई, मगर इसके गले में डोरी बंधी थी। जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ती गई, डोरी भी साथ चढ़ती गई, नीचे गरम गरम पानी के अंदर वो भी बेचारा आंखें बंद करके पड़ा था। एक जोर का झटका लगा, इसने पता नहीं क्या हुआ, कयामत आ गई, देखा तो पानी के बाहर निकला और लटकने लगा। चमड़ी ने देखा कि ये पता नहीं और क्या बला है, ऊपर उंदर डोरी के साथ नीचे लटकता हुआ, ये काछबा। चमड़ी ने ऐसा एक चक्कर लगाया, गांव के छोकरे गांव के आदमी इकट्ठे हो गए कि ये नवा तमाशा। चमड़ी बहुत ऊपर चली गई, और ऊपर जाके कुछ डोरी हिलते हिलते या टूट गई या पांव में से निकल गई। बड़ी बुलंदी के ऊपर से कछुआ गिरा एक पत्थर के ऊपर, उसकी सारी ढाल बाल चकना चूर हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गया, मर गया। मावित्र का कहना माना नहीं, उंदर की संगत के अंदर खुद भी मरा, بدماشوں کی سنگت میں بیٹھ کے انسان کو کبھی نیکی نہیں ملتی، لچے آدمی کی سنگت میں بیٹھ کے انسان اگر مان لو کہ لچائی کبھی جلدی سے نہیں بھی لگی تو ان کی سنگت کے اندر سے جو رنگ نکلا ہے وہ ضرور ان کو خراب کرے گا. سفید کپڑے پہن کے شارٹ سکن کا سوٹ پہنو اور کسی کولتا بیچنے والے کی دکان پہ صرف پانچ منٹ تمام وڈیلوں نے، مہاتماؤں نے، عالموں نے اس بات کے اوپر بڑا زور دیا، اچھے لوگوں کی سنگت میں بیٹھو، اچھے لوگوں کی سنگت کے اندر اچھائیاں ملیں گی، انوبھو ملے گا، سمجھداری کی باتیں ملیں گی جو جیون میں ڈالنے سے جیون میں فائدہ روپ بنتی ہیں. ہم اسماعیلی لوگ جو ہیں، ہماری سنگت کیسی ہونی چاہیے ہمارے اپنے مذہب کے حساب سے؟ مولا نے کہا ہے کلام میں کہ سنگت کرو دیندار کی، جا بیٹھو اسی کے پاس. پھر فرمایا کہ تم دیندار کے پاس روز جا کے بیٹھو تو تمہارے دل کو خوشی ملے گی، جو چاہو خوشحالی دل کی. اگر تم دل کی خوشحالی چاہتے ہو تو لکھ رہو خوش گلزار، ہر وقت خوش رہو. جو بھائی برادر دین کے، جو دین کے بھائی بہن ہیں، ان کا نت کرو دیدار، اپنے دین بھائیوں کا دیدار کرو، اپنی دین بہنوں کا دیدار کرو، من صاف رکھو، ہمیشہ پرفولت اور خوشی رہو، خدا کو یاد کرو اور اس کی سنگت پاؤ. جس طرح دنیا کے اندر انسان اگر کسی راجا بادشاہ کی سنگت میں آ جائے تو آہستہ 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 اس کا جو جگہ اور مقام ہے وہ امیروں وزیروں کی طرف چلے جاتا ہے. جو بادشاہ کا جو دوست ہو جائے تو اس کو چھوٹے چھوٹے سپاہی بھی سلام کرتے، سلیوٹ کرتے ہیں. پھر اس کا آنا جانا امیروں وزیروں کے پاس ہوتا ہے، امیر وزیر جانتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا دوست ہے. بادشاہوں کی صحبت سنگت میں آنے والے کی جو لائف ہے وہ بدل جاتی ہے. اسی طرح سے خدا تعالیٰ سب سے بڑا بادشاہ ہے، زمین آسمان کا سلطان مولا باپا ہے. کبھی ہم کو مولا کی سنگت ملے تو، اگر دنیا کی سنگت کے اندر ہم کو دنیا کے فائدے ہوتے ہیں، جیسی سنگت ایسا فائدہ. آپ پیسے والے کی دوستی کرو تو بھلے وہ پیسے والا آپ کو دو دمڑی نہیں دے گا، لیکن ایک بات ہے کہ پیسہ اکٹھا کرنے کی چالاکیاں آپ سیکھ جاؤ گے. چوروں کی سنگت میں بیٹھو تو چوری کرنے کا ہنر آ جائے گا، ڈاکو کی سنگت میں ڈاکوگیری آئے گی، علم والے کی سنگت میں علم ملے گا. کبھی خدا کی سنگت کرو تو خدائی شکتیاں ملیں گی. خدا کی سنگت کرو گے تو خدائی شکتیاں ملیں گی. خدا کی سنگت کرنے سے فرشتے سلام کریں گے. جس طرح راجا کی دوستی میں آ کے راجا کے چھوٹے موٹے سپاہی امیر وزیر سے لوٹ کرتے ہیں، ایسا ہی خدا کی دوستی کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں. پیر نے کہا ہے گنان میں، تینے دیو لوگ پرنام کرے، دیو لوگ یعنی فرشتے اس کو پرنام کرتے ہیں اور اس کا مقام ویکنٹھ ہوتا ہے. مولا کی سنگت ہم کو جمع کھانے میں ملے. مولا کا جو دربار ہے، جس طرح راجا کا دربار ہے، ہمارے پریزیڈنٹ کو ملنا ہوئے تو اسٹیٹ ہاؤس جا کے ملتے ہیں، یہ مولا کا اسٹیٹ ہاؤس ہے، یہ مولا کا دربار ہے، یہ سلطان کا دربار ہے، دین و دنیا کے سلطان کا. اس کے دربار میں ادب مان سے، حشمت سے، رسپیکٹ سے، بہت بڑی عاجزی سے ہم اس کے دربار میں آتے ہیں. راجاؤں کے دربار میں، راجاؤں کے دربار کا مان ادب رسپیکٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے خدا کے دربار کے اندر بھی اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کا ادب مان ہوتا ہے. اور اس ادب مان کے حساب سے جب ہم مولا کے دربار میں آتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، مولا کا نام لیتے ہیں، مولا کی دوستی میں آتے ہیں. اب میں آپ کو مولا کا فرمان سناؤں. حضرت امام کہتے ہیں کہ جماعت ہے وہ میرا انگ ہے. ماں باپ کے فرمان میں ماں باپ کہتے ہیں جماعت میرا انگ ہے. ناخن، انگلیاں، شریر کے اویویو، یہ انگ ہے نا انسان کا. جو آدمی جماعت خانے آتا ہے وہ مولانا حضر امام کا انگ بنتا ہے. حضر امام پوتر ہے، حضر امام کا انگ بھی پوتر ہے. اگر ہم یہاں جماعت خانے میں آتے ہیں तो हम हाजर इमाम का अंग बनके हम पवित्र बनते हैं। कोई माँ और बाप अपने बच्चे को कहते हैं, तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। ये कलेजे का टुकड़ा, शरीर में से कलेजा निकाल के माँ ने उसके टुकड़े नहीं बनाए, लेकिन उसको कहा कि तू मेरा अंग है, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। ये मोहब्बत के हिसाब से, यानी तू और मैं एक हैं, बच्चे और माँ में फर्क नहीं होता, बाप बच्चे में फर्क नहीं होता, क्योंकि माँ बाप बच्चे को अपने कलेजे का टुकड़ा समझते हैं, अपना अंग समझते हैं, अपना लोही समझते हैं, अपना दिल समझते हैं, अपना आप समझते हैं, ये दोनों एक ही होते हैं। इसी तरह से मोमिन मौलाना हाजर इमाम का रूहानी हिसाब में अंग है, मौलाना हाजर इमाम के कलेजे का टुकड़ा है, मौलाना हाजर इमाम के प्यार का उसके साथ संबंध है। जो आदमी जमात खाने आता है वो मौलाना हाजर इमाम का अंग है, वो मौलाना हाजर इमाम के विचारों में है, वो मौलाना हाजर इमाम के शरीर के साथ लगता है। पीरों ने कहा कि नाद में कि मैं उसको अपने अंग के साथ लगा के रखूं। सतगुर कह रहे दास हमारा जे हो ऐसे, देखे हमारा गले ना हार। वो मेरे गले का हार है, अंग के साथ लग के रहता है, गला अंग है और हार उस गले में अंग बन जाता है। इसी तरह से हम जब जमात खाने आते हैं मौलाना हाजर इमाम के इस दरबार के अंदर, हम मौला बापा का शरीर बनते हैं, अंग बनते हैं, हम उसकी मोहब्बत में आ जाते हैं, हम उसके विचारों में आ जाते हैं, हम उसके प्रेम की पछेड़ी के नीचे आ जाते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी पछेड़ी में छुपा लेती है। इस संगत सोबत में आके हमको क्या क्या रूहानी फायदे मिलते हैं, अब बताओ कि हाजर इमाम बैठा है, हम उसके पास जाके बैठे के पीछे में जाके शराबियों की संगत में बैठे, हम हाजर इमाम के पास जाके बैठे उसकी संगत करें वो अच्छा, कि हम कोई चोरों बदमाशों डाकुओं की संगत में बैठे वो अच्छा, मौलाना हाजर इमाम के दरबार में आके हाजर इमाम की संगत में बैठे वो अच्छा, कि हम सिनेमा में रखड़ते हुए या हम अपनी किसी क्लब के अंदर बैठे हुए वो अच्छा, हाजर इमाम की संगत में आके उसके दरबार में बैठे वो अच्छा है, कि या हम लोगों के साथ बैठ के गप गपोड़े मार के और एक दूसरे की निंदा करते होंगे और गुना लेते होंगे वो अच्छा। मबब फरमाया जो आदमी समीसान को जमा खाने नहीं आता वो अपने आप के ऊपर जुल्म करता है, सचमुच जुल्म होता है, क्योंकि वो आदमी खोटे रस्ते जा रहा है, खोटे रस्ते। त्रांबो तीसो लेने भेरी तेनी मोहर जे थाये चो वाचे ए चोरी ते नहीं पजे, खोटी कोई हाथ ना सुहाये त्रांबोती भेड़िए। त्रांबा सीसा इन दो की मिक्सचर करो तो निकल की तरह कॉपर कलर की मोहर बनती है, खोटी मोहर। फिर फरमाते हैं कि इस तरह से ये जो तुम मोहर बना लेते हो, कभी गांव में उसको चलाओ तो खोटी समझ के उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसी तरह से दीनदारों, जो हाजर इमाम का चाहने वाला, हाजर इमाम का मुरीद, हाजर इमाम का मोमन है, वो जब दुनिया की बदमाश संगतों सोबतों में बैठता है तो वो चलता नहीं, वो चीज निभती नहीं। यही त्रांबा शीशे के ठिकाने कभी एक दो टका या तीन टका जितना सोने के साथ लगाया जाए और दरेक सोना मोहर के अंदर थोड़ा त्रांबा डालते हैं, कारण के सोना इतना नरम होता है, 100% सोना कभी भी मोहर में या दरदागीने में वपरे में नहीं आता, नेवर। 100% सोना जो होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। सॉफ्ट होने के कारण से मोहर की उसके ऊपर जो स्टैंप लगती है डाई, वो घिस जाती है, इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा रखना पड़ता है, तो 2 टका 3 टका 5 टका तलक रखते हैं, त्रांबा डालते हैं सोने में, तो ये त्रांबे की सोने जितनी कीमत बनती है। संगत के कारण से हजर इमाम 100% सोना है। हम कभी इस दुनिया के अंदर 100% मजहब के ऊपर जो चलें, 100% बिल्कुल उस तरह से, तो फिर इस दुनिया के अंदर हमारा रहना खत्म हो जाता है। मतलब ये कि फिर दुनिया की सब चीजें वगैरह हैं, उससे हम फिर बेदरकार अपनी ड्यूटियां भी भूल जाते हैं। ये तो फिर मौत का समय है। जो इंसान 100% हो गया तो कुदरत फिर उसको रहने भी नहीं देती, उसको उठा लेती है, क्योंकि वो खुदा बन गया, वासल हक हो गया। मगर दुनिया में रहने के लिए मोहर के अंदर थोड़ा सा इसलिए डाला जाता है त्रांबा, ताकि मोहर टिक सके। हमको हमारे इमाम ने फरमाया, बिजनेस करो, बाल बच्चे पैदा करो, दुनिया के अंदर रहो, रीत पर भी थोड़ी बहुत मौज मजा भी करो, खाना पीना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी तरह जीवन गुजारो। ये त्रांबा 2 टका 3 टका है। दुनिया के अंदर दुनियादारी रखना 2-3 टका जितनी, ताकि तुम्हारा जो 100 टक का सोना है वो खराब ना हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। दुनिया में रहो मगर अपना दिल दुनिया पे मत लगाना। बाल बच्चे हमारी ड्यूटी है, बिजनेस रोजगार हमारी ड्यूटी है, खाना पीना शरीर टिकाने के लिए हमारी ड्यूटी है। हमको जो जो दुनिया के अंदर मौला की तरफ से जो जोखमदारियां मिली हैं, हमको हुक्म किया है, वो जो जोखमदारियां हाजिर इमाम की इबादत में आती हैं। गुरफी सदर दिन माँ बाप ने लिखा है कि द्राक्ष है, आप द्राक्ष ग्रेप्स ले जाके दुकान से, तो ग्रेप वाला जो बेचने वाला है दुकानदार, 3 के 4 शिलिंग रत्तल बेचता है, वो एक झुमका उठा के तोल के दे देता है। आप ग्रेप खा जाते हो और उसकी जो डांखड़ियां होती हैं वो फेंक देते हो, लेकिन इन डांखड़ियों के भी आपने 4 शिलिंग रत्तल के हिसाब से पैसे दिए हैं। तो ग्रेप के साथ डांखड़ियों की भी कीमत होती है, हालांकि बड़ी हल्की है, लाइट है, उसका कोई खास वजन नहीं, मगर फिर भी ग्रेप की संगत में डांखड़ी की भी वही कीमत है जो ग्रेप की कीमत है। इसी तरह से मौलाना हजर इमाम की संगत में आके हम हजर इमाम नहीं बनते, हम खुदा नहीं बन सकते जब तलक के दुनिया में हम जीते हैं। मगर जब हम दुनिया के अंदर अपने मालिक की संगत में हमेशा रहे, तो मरने के बाद हमारा आत्मा मौलाना हजर इमाम के नूर में जाके हमको भी हजर इमाम बना देता है, हम फिर खुदा बन जाते हैं, हमारी हस्ती मिट जाती है। कारण कि हमारा आत्मा, हमारे शरीर में जो रूह है, वो मौलाना हजर इमाम का नूर है, और यही हमारा एम और ध्येय है। वहां तक हमको जाना और पहुंचना है। कभी वहां तक नहीं गए तो फिर 84 के फेरे में पड़ जाएंगे। 84 का फेरा, कदाच हम वापस जानवर नहीं बने तो मतलब ये चक्कर में पड़ गए, मुसीबतों में पड़ गए। आप देखो दुनिया के अंदर जो लोग खुदा से हटे हुए हैं, सबके सब दुखी हैं। गई कल हमारे प्रेसिडेंट मौलिमु नेरेरे ने स्पीच की, परसों कई काल के पेपर में थी, वो स्पीच पढ़ने जैसी है। हमारे नामदार प्रेसिडेंट मौलिमु जूलियस नेरेरे ने बड़ी अच्छी स्पीच की है। वो कहता, मैं खुदा को मानता हूं। पेपर में है, प्रेसिडेंट ने कहा है कि बहुत से लोग मुझको कम्युनिस्ट समझते हैं, लेकिन मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, कारण के मैं खुदा को मानता हूं, खुदा में मेरा विश्वास है। तो मैं ये कहता था कि जो लोग खुदा में विश्वास नहीं रखते, जो अधर्मी हैं, जिधर जिधर भी हैं, वो सुखी नहीं है। वो देश जैसे कि रशिया, जैसे कि चाइना या और दूसरे देश हैं कि जिन्होंने कम्युनिज्म ले लिया है, कम्युनिज्म लेने से सबसे पहले खुदा को छोड़ना पड़ता है, उन्होंने खुदा का त्याग कर दिया, तो खुदा को छोड़ के उन्होंने दूसरा खुदा बनाया। रशिया वालों ने स्टालिन को खुदा बनाया, चाइना वालों ने माओ को खुदा बनाया, असल खुदा को छोड़ के खोटा खुदा बनाया। उसके बगैर काम तो नहीं चला उनको, लेकिन खुदा तो छोड़ के इन देशों में के जिधर खुदा नहीं है, खुदा की मान्यता नहीं है, वो कोई भी सुखी नहीं है। और वो आदमी भी जो खुदा ताला को भूल जाता है या खुदा की हस्ती को नहीं मानता, उस आदमी का जीवन देख लो, उसको कोई सुख नहीं। सुख की तारवनी मोटर और बंगले से मत करना। मोटरों बंगलों वाले आदमी सुखी नहीं है जितने झोंपड़ी वाले सुखी हैं। अमीरों को पैसे वालों को सुख नहीं, और दुनिया के दरेक धर्म वालों ने पैसे वालों को तो झूठियां ही मारी हैं। और बात भी सच है, पैसे वाले आदमी का दिल तंग हो जाता है, उसकी बुद्धि पैसे में ही रहती है, उसका प्रेम पैसे में ही रहता है, वो बीवी बच्चे के प्यार को भी पैसे के ऊपर पहले टेस्ट करके फिर प्यार करता है, अगर पैसे की बात आती है तो वो प्यार भी छोड़ देता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, ईसा नबी फरमाया कि सुई के नाके में से ऊंटों की एक कतार निकल जाए, सुई के नाके में से ऊंट निकल जावे, ईसा नबी कहते हैं ये पॉसिबल है, लेकिन पैसे वाला जन्नत के दरवाजे में से अंदर निकल अंदर चला जावे वो पैसे वाला पॉसिबल नहीं है। सुई के नाके में से ऊंट निकल जावे पॉसिबल है, लेकिन पैसे वाला जन्नत के दरवाजे में से निकल के जन्नत में जावे ये पॉसिबल नहीं है। हमारे हाजिर इमाम ने हमको फरमाया गिनान में फरमान में कि अगर पैसे वाला और एक गरीब दोनों एक तरीके मोमिन होने तो गरीब आदमी जन्नत में पहले जाएगा, और पैसे वाला 50,000 साल दरवाजे के ऊपर पहले खड़ा रहेगा, आधे लाख बरस के बाद उसको कहेंगे अच्छा अभी तू अंदर। पैसे का मतलब जिसके पास 50 लाख के करोड़ शिलिंग होवे उसको पैसे वाला मत समझना, क्योंकि 50 लाख शिलिंग वाले के करोड़ शिलिंग वाले फकीर गरीब भी होते हैं, और लाख दो लाख शिलिंग वाले पैसे वाले होते हैं। पैसे वाला किसको कहते हैं? जिसको पैसे से प्रेम होवे। कभी 10,000 शिलिंग वाला आदमी एकदम पैसे का पुजारी बन गया है और खुदा को छोड़ दिया तो ये 10,000 शिलिंग वाला आदमी पैसे वाला है, लेकिन 50 लाख शिलिंग वाला आदमी खुदा को मानता है और उसको पैसे से प्रेम नहीं तो वो पैसे वाला नहीं है। पैसे वाला उसको कहते हैं जो पैसे की पूजा करे। दुनिया दीन की जो मिलती धार भाई, दुनिया दीन की जो मिलती समझाने की ऐसी बात रे भाई, मन समझाने की ऐसी बात। ये दुनिया अजानी ना समझे कहते हैं भेद को समझ को, मन समझाने की ऐसी बात है, दुनिया अजानी न समझे खाता, उसका भेद नहीं जानती दुनिया कि अगर दुनिया और दीन दोनों साथ एक ही होते, दीन दुनिया की जो मिलती दाता, दीन की समझ और दुनिया की समझ अगर एक ही होती तो फिर शमस माँ बाप कहते हैं बेदीन कोई ना होता। यानी दुनिया की समझ दीन की समझ से जुदी है, दुनिया की समझ लोभ लालच में है, मूर्खाई में है, दीन की समझ इंसान को खुदा के रास्ते की तरफ लगा जाती है। जो दीनदार हैं वो दुनिया में इस तरह से रहते हैं कि जैसे पानी के अंदर एक मुर्गा भी रहती है, और ये हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है कि तुम दुनिया में इस तरह रहो जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है। इंग्लिश में मुर्गा भी को सीगल कहते हैं, ये पानी के पंछी پانی کی بطخیں جو ہیں وہ پانی میں رہتے ہیں لیکن ان کے شریر بھینے نہیں ہوتے. مولا فرمایا مومن دنیا میں رہتا ہے مرغابی کی طرح, دنیا کا اثر اس کو نہیں لگتا. جس طرح مرغابی پانی میں رہتی ہے مگر شریر اس کا گیلا نہیں ہوتا, بھینا نہیں ہوتا, ایسا مومن دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا کا اس کو اثر نہیں لگتا. کارن کے وہ دنیا کے اندر رہتا ہے, شام کو جماعت کھانے آ جاتا ہے, سارا دن بھی مولا کو یاد کرتا رہتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو مولا کی بندگی کرتا ہے, ساری رات سو کے اٹھنے کے بعد وہ مولانا حضر امام کا ذکر کرتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا ہے آدھی رات کے بعد اٹھو اور خدا کا آہستہ آہستہ ذکر کرو. بیت الخیال کا جو بول لیا ہے دینداروں وہ کوئی مسخری نہیں ہے. دنیا میں رہو, کمانی کرو, کھاؤ پیو. راجا جنک راجا بھی تھا, تپیشوری بھی تھا. اسلام میں بھی ایسے بہت سے داخلے ہیں, بہت سے کروڑوں پتی تھے لوگ, مگر دین کے اندر بھی وہ بالکل درویش اور فقیر تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے راجا بھی تھے, سلیمان نبی بھی تھے راجا بھی تھے, راجا جنک ستی سیتا کے باپ تھے, رام کے سسرے تھے راجا جنک, مگر وہ راج بھی کرتے تھے اور رات کو اٹھ کے خدا کی بندگی کرتے تھے. تپیشوری بھی تھے, اتنے ہی تپیشوری. ایک دفعہ راجا جنک کو کسی ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا. محفل بیٹھی تھی, دین کی باتیں ہوتی تھی, دھرم چرچا ہوتی تھی. سوال کرتا ہے کہتے مہاراج آپ راج ولاس کرتے ہو؟ فرمایا ہاں. راج ولاس یعنی راج کا عیش, راج کا عیش جو ہے وہ بالکل انہیری چیز ہے. تو آپ تپسیا بھی ایسی کرتے ہو یعنی عبادت بھی کرتے ہو؟ فرمایا ہاں. تو یہ دونوں چیزیں کیسے چل سکتی ہیں؟ کہا تمہیں اس کا جواب چاہیے؟ کہا مہاراج جو سہلائی سے اس کا جواب مل سکے ایسے طریقے سے مجھے دو تو اچھا. بولے اچھا تھوڑے دن ٹھہرو. راجا جنک نے حکم دیا کہ شہر کے اندر خوب بتی کرو, دیپ مالا کرو, خوشی کرو. ایک بابت کے اندر میرے کو سکسس ملی ہے اس کی خوشی کرو. پرجا نے خوب خوشی کی. کہا کہ تین دن تلے خوب خوشیاں مناؤ اور چھٹی بناؤ. آخر شہر کے اندر بتیاں جلیں, دیپ مالا ہوئی, جگہ جگہ اچھے اچھے کھانے پکے, راج کی طرف سے بالکل فری لنگر لگ گئے, ناچ گانا, ڈانس باجا گاجا, عورت مرد اچھے اچھے بھبکے دار کپڑے پہن کے نکلے. کوئی نٹ ہے وہ اپنی کرامت دکھاتا ہے, کوئی تڑاؤ کے اندر مر جیویا گوتا مار کے دکھاتا ہے اپنے اپنے کرتب, اپنے اپنے ہنر, اپنا اپنا ڈانس, اپنا اپنا ناچ. سب پرجا امٹ پڑی. راجا جنک دیکھنے کے لیے نکلے, دیکھا کہ بالکل ایک دم ٹاپ کے اوپر خوشی پہنچی ہوئی ہے. اس آدمی کو بلوایا, آؤ بھائی میں آج تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں. اچھا مہاراج. نوکر کو اشارہ کیا, ایک پلیٹ لے کے آیا دو کنارے اونچے, تیل کے ساتھ اس پلیٹ کو بھر دیا لبا لب. اس کے دو ہاتھوں کے اوپر راجا جنک نے یہ پلیٹ رکھی, پیچھے ایک آدمی کو رکھا, ننگی تلوار اس کو دی ہاتھ میں اور اس کو کہا کہ دیکھو اس کے پیچھے چلے جاؤ, اگر یہ تیل کا ایک ٹیپا بھی گرا لے تو اس کی گردن اڑا دینا. وہ تو کانپنے لگا ادھر ہی. کہتا مہاراج یہ کیا؟ بولا بس آج تم کیا ایسا حکم ہے ہمارا جاؤ. لیکن مہاراج میرے سوال کا جواب, کہتے وہ بعد میں دوں گا, پہلے یہ کام کر کے آؤ. آخر گام میں سے ہو کے آؤ, لیکن خبردار اس کو میں نے پیچھے حکم کر رکھا ہے, تیرا اگر ادھر تیل کا ایک ٹیپا بھی گرا تو یہ تیری گردن مار دے گا. اس کو ایسا اشارہ کیا تھا کہ گردن بردن اڑانا نہیں, مگر اس کو تو یہ بتایا. اس کے تو ہانجے گگڑ گئے. بس پلیٹ لے کے نکلا, آکھا گام گھوم کے آیا, फूंक फूंक के कदम रखे, आस्ते आस्ते शरीर इस तरह से हिलावे के प्लेट नहीं हिले, पसीना पसीना रेत जेब होके आया वापस, बिल्कुल सलामती से वापस आया, एक टीपा भी तेल का उसमें से गिरा नहीं। आके तो गिर पड़ा, हाश, सलामत वापस आ गया। बोला हुक्म किया, जाओ नहाओ कपड़े बदलो। नहाया धोया कपड़े बदले, महाराज जनक के पास बैठ के खाना पीना खाया। कहते महाराज मेरे सवाल का जवाब, कहते मूर्ख तेरे को जवाब तो मैंने दे दिया पर महाराज मैं समझा नहीं। अच्छा पहले उसका बात फिर करेंगे, मुझे ये बता कि गांव के अंदर तुमने क्या देखा। क्या देखा? आपने तो मेरे पीछे जल्लाद रखा था महाराज, वो मलकुल मौत तो साथ ही था तलवार लेके, मुझे कुछ देखने का होश था। मेरी तो सारी सुर्ती इस बात में थी कि इसमें से तेल का टीपा ना निकले, नहीं तो ये अभी मेरी गर्दन मार देगा। ये यमराज तो साथ था महाराज, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या बाजा गाजा नाच रंग डांस लेना देना महाराज मुझे पता नहीं। बोले मूर्ख यही जवाब है, खुदा ने यमराज हर एक आदमी के साथ तलवार दे के जैसे तेरे साथ मैंने रखा, ऐसा हर एक के साथ मलकुल मौत तो साथ ही है बिल्कुल। और खुदा ने हमको अपने नूर में से नूर दे के हमको दुनिया में भेजा है कि जाओ घूम के आओ। जिस तरह तूने इस तेल की कदर की और तुझको आखे गांव में घूमने पर भी तुम्हें मालूम नहीं कि गांव की मौज शौक क्या है, ऐसा ही जो तपेश्वरी होते हैं वो दुनिया में रहते हैं, राजगादी भी पे बैठते हैं, मगर उनका जो जीव होता है वो इन चीजों के साथ नहीं होता। उनको तो ये फिक्र होती है कि मेरा मौला नाराज ना हो जाए, ये मलकुल मौत मेरी गर्दन ना मार दे, ये तेल का टीपा गिर ना जाए। मोमन ऐसा है कि दुनिया में रहता है मगर उसकी मोहब्बत दुनिया के साथ नहीं होती। वो कोई भी चीज उसके सामने आती है पहले देखता है मेरा दीन खराब तो नहीं होता, कुछ भी पहले आवे कोई भी चीज, मोमन हमेशा पहली चीज ये देखता है मेरा दीन तो बिगड़ता नहीं। जैसे व्यापारी है, कोई भी ग्राहक आता है किसी भी चीज को हाथ लगा ले तो व्यापारी को सबसे पहले यह ख्याल होता है इसमें से मुझे नफा कितना है, मेरा नुकसान तो नहीं होता। यही विचार मोमन का होता है कि ये काम करने में मेरा दीन का नुकसान तो नहीं। आपकी दुकान के ऊपर एक ग्राहक आया, आप उसके साथ बेईमानी से व्यापार कर रहे हो या ईमानदारी से व्यापार कर रहे हो? अगर आप मोमन हो तो आपको पहले यह ख्याल आएगा कि मेरा ईमान तो खराब नहीं होता, मैं इसके साथ दगा तो नहीं कर रहा। दगा करोगे कितना करोगे, 5 सेंट का करोगे, 5 शिलिंग का करोगे, 50 शिलिंग का करोगे, कभी 5000 शिलिंग का करोगे। 5000 शिलिंग के लालच के लिए, के 25-50 हजार शिलिंग के लालच के लिए अगर ईमान खराब होता है मोमन कबूल नहीं करेगा। मोमन अपनी एक चावल के दाने जितना भी ईमान खराब करने को 5-25 हजार शिलिंग की खातिर तैयार नहीं। आप में से किसी को मैं कहूं कि ये मैं 500 शिलिंग देता हूं, इतनी उंगली मेरे को काटने दो, तकली उंगली, ये नाखून जितनी उंगली काटने दो, 500 शिलिंग ले लो, कोई तैयार होएगा? अपने शरीर की उंगली काटने के लिए 500 शिलिंग लेके भी कोई तैयार है? लेकिन उसूल के ऊपर या कोई काम के ऊपर इंसान अपनी गर्दन कटवा लेता है। मोमन कोई भी कीमत के ऊपर अपने ईमान को बिगड़ने नहीं देता। उसके सामने उसकी बीवी बच्चे माल मिलकत, उसके सामने कुछ भी लालच रख दो, ईमान बिगड़ने नहीं देगा। बस ये मोमन की निशानी है। लेकिन जो मोमन अपने आप को मोमन कहलवाए और फिर वो ईमान बेच के दुनिया की चीजें ले ले रहे, बस यही चीज से फिर वो हट जाता है। एक डगला जो खराब भरा तो गया, एक डगला अगर खराब भर दिया तो ऊपर से गिर पड़ेगा, हड्डे पतले गिर गए तब उसके खत्म हो जाते हैं। लालच इंसान को बहुत बुरी है। समी सांझ को दुकान पे बैठा है, जमा खाने नहीं आता, क्या कहता है? मौला बापा तो कहा ना दुकान के ऊपर दुआ पढ़ सकते हो, दुआ तो पढ़ सकते हो, चलो अगर भी दुआ पढ़ लोगे तो फायदा तो होगा। लेकिन मौला ने फरमाया है अगर तुम रोज जमा खाने नहीं आओगे तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा ईमान चला जाएगा। मैं फरमान में से निकाल के बताऊं, मेरे मुंह से जो चीजें निकल रही हैं दीनदारों, वो इलम की किताबों में से ही निकाल के मैं आपको कह रहा हूं, एक शब्द भी मेरा नहीं। मौला फरमाया कितने भी तुम बड़े मोमिन हो गए, भले तुम्हारी दसवंत भी बराबर होगी, लेकिन तुम जो रोज जमा खाने नहीं आओगे तो आहिस्ता 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 एक बरस, आप इस तरह से फरमान करते हैं, एक बरस, दो बरस, पांच बरस, दस बरस, बीस बरस, तुम्हारा ईमान चला जाएगा, आस्ते आस्ते शंका पैदा हो जाएगी। कारण के एक टोड़े में से जो निकल आया, एक भेड़, एक बकरी भी टोड़े में से जो निकल गई तो वरु खा जाएगा उसको। वरु यानी शैतान। समीतान को सिनेमा जाना मोमन का काम नहीं, समीतान को दुकान पे बैठना मोमन का काम नहीं, समीतान को कोई आदमी की खराब संगत सोबत में बैठना मोमन का काम नहीं, बल्कि जमात खाना वो चीज है दीनदारों कि अगर खुदा न खास्ता किसी का थोड़ा भी ईमान होएगा और वो रोज जमात खाने आएगा तो रोज मौला के दरबार में आके मौला की संगत मिलेगी, फरिश्तों की संगत मिलेगी, क्योंकि जमात खाने में फरिश्ते भी हैं, मोमनों की संगत मिलेगी, उसका ईमान मजबूत होता जाएगा, वो बड़ा ईमानदार बनेगा, बड़ा आबिद बनेगा, क्योंकि रोज हाजिर ईमान की संगत में आता है, उस आदमी की वलन बदल जाएगी। अगर वो बेदसवंदी होएगा तो रोज जमात खाने आ आ आ आके एक दिन उसके कलेजे में कोई ना कोई तीर लग जाएगा, किसी वाज का, किसी फरमान का, गिनान के पाठ का, वो दसवंदी हो जाएगा, उसके अमाल सुधरने लग जाएंगे। समीतान के वक्त ही वो टाइम है कि दुनिया की मेजोरिटी बुराइयां, समीतान का टाइम होता है, शराबी को शराब शाम को सूझती है, बद औरत की संगत में जाने वाला भी शाम को ही तैयारियां करता है, जुगाड़खानों में जाने वाला भी शाम को ही जाके बैठता है, और भी बदियां बुराइयां, मेजोरिटी बदियां बुराइयां शाम के वक्त ही होती हैं, उनकी स्टार्ट है, फिर भले वो आधी रात तक चलती होवे, लेकिन जो आदमी शाम को मौला के घर पे आ गया, यहां वो छांटा लेके हजर इमाम का नूरानी दुआ आशीष लेके उसकी घर वापस जाया, जाके आठ बजे साढ़े आठ बजे नौ बजे खाना जाके आठ बजे साढ़े आठ बजे नौ बजे खाना पीना खा के बाल बच्चों में बैठे, फिर उसको बदियों बुराइयों की तरफ दिल नहीं जाएगा। सिनेमा जाना गुना नहीं, लेकिन जमा खाना छोड़ के सिनेमा जाना गुना है। इसी तरह से और कई चीजें हैं जो गुना में नहीं आती, लेकिन जमा खाना छोड़ के उधर जाना गुना है। दाखला तरीके दुकानदारी करना खुदा की बंदगी है, आप अपनी रोजी रिजक पैदा करते हो, हक हलाल में रहो और अपनी दुकानदारी करो, वो दुकानदारी खुदा की इबादत है। लेकिन शाम के वक्त भी आप दुकान खोल के जमात खाने से मुनहरिफ हो जाओ, वो गुना है। मौला इधर आया है, मौला का दरबार लगा है, और आपने मौला को छोड़ के दो पांच शिलिंग के ग्राहक के लिए आप दुकान पे बैठे हैं, भला दुकान पे कितना व्यापार हो जाएगा जमात खाने के टाइम पे, आखिर दिन जितना व्यापार इतना समझ लो। चलो तो मौला के लिए आपने ख्याल ना किया, लेकिन वो पांच पच्चीस के व्यापार का ख्याल किया। क्या मौला में ये शक्ति नहीं कि वो आपको बरकत दे देवे? इसमें ये शक्ति है। देखो दुनिया की अंदर आंख खोल के अमुक आदमी दीनदारों ऐसे हैं, उनको देख के मुझे तौबा सूझती है। मैं जब भी किसी दुखी को देखता हूँ, मेरे पास बहुत लोग आते रहते हैं, अपनी कौम के भी पर कौम के भी, जब भी मैं किसी को दुखी देखता हूँ तो पहले मैं अस्तग़फ़रुल्लाह को पढ़ता हूँ, या मौला मेरे भी गुनाह मुआफ कर, क्योंकि दुख हमेशा गुनाहों की सजा होती है। एक बात आपने मेरी आवाजों में सुना होगा बहुत दफा, कि हमेशा दुनिया में जितना भी दुख है, कोई भी जात के दुख, वो सब हमारे गुनाहों के कारण है। कोई जात का भी दुख है, एक टका दुख ऐसे होते हैं जो खुदा हमारे ऊपर हमारी पारखा के लिए भेजता है, एक टका, लेकिन 99% जितने दुख हैं वो हमारे गुनाहों के कारण से होते हैं। तो मैं अस्तग़फ़रुल्लाह पढ़ता हूँ और फिर मौला का शुक्र करता हूँ कि ये दुख मेरे नहीं है, मगर मैंने देखा है इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे आदमी दीनदारों के सुबह से शाम तक एक ढगे की तरह, गधेड़े की तरह काम करते हैं, लेकिन दो टक का खाना नसीब नहीं होता। है ना, ऐसे आदमी बहुत से, और बहुत से ऐसे आदमी हैं कि वो 9 बजे तो खटले में से निकलते हैं, नहा धो के शान शौकत के साथ 10 बजे आए ऑफिस में, 2 कलाक बैठ के काम करते हैं, 2000 शिलिंग पैदा कर लेते हैं। ये 2 आदमियों में इतना डिफरेंस, आप बोलोगे अकल और आवड़त, अकल और आवड़त क्या मां के पेट से निकली थी? अकल और आवड़त उसको भी मिली, उसको भी मिली। एक के ऊपर खुदा की लानत है, एक के ऊपर खुदा की रहमत है। एक आदमी थोड़ी मेहनत करता है, खुदा इतना देता है, और दूसरा आदमी सुबह से शाम तक गधेड़े की तरह काम करता है, फिर भी उसको इतना नहीं मिलता। ये खुदा के हाथ में है, ये रोजी रिज़क खुदा के हाथ में है, रहमत अता करना खुदा के हाथ में है, और वो चीजें अलबत्ता हमारे आमाल के सामने हैं। अगर आप खुदा को अपना वाली बना लो, खुदा के ऊपर तवक्कुल और भरोसा रख दो, खुदा के ऊपर सब कुछ छोड़ दो और अपने आमाल सुधार लो, दगा फटका छोड़ दो, हेर फेर छोड़ दो, लुचाई बदमाशी छोड़ दो, रख दो खुदा के ऊपर, देखो फिर 6 महीने बरस के अंदर आपको बरकत ना मिले तो आओ पकड़ना मुझे, मुझे पकड़ना, क्योंकि ये साहब का फरमान है, जमात खाने रोज आओ, 10 मन बराबर दो, हक हलाल की रोजी कमाओ, अमाल अपने नेक रखो। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक आदमी की मेहमानी में यह फरमान किया था, फिर भी अगर तुम आसूदा नहीं बनो तो माँ बाप ने अपनी चाय और कॉलर को ऐसा पकड़ के फरमाया मुझे गर्दन से पकड़ो। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक आदमी की अरीजे के ऊपर के खुदावंद 20 बरस हुए, मानी आगे और मैं पीछे हाथ में आती नहीं, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ खुदावंद, रोज जमा खाने जाते हो खुदावंद, वही मेरा टाइम है, उस वक्त ग्राहक आते हैं। अच्छा बस तो तुम ग्राहकों के पीछे रहो, खुदा के छोड़ दो, जसवंत देते हो खुदावंद पूरा ही नहीं होता, जसवंत कैसे दूं? उस पर से माँ बाप जरा तप गए, माँ बाप तप गए, माँ बाप गुस्से में आ गया, गुस्सा यानी ऐसा जरा जोश में आ गया, सब बोले कि तुमने मेरी बयत की है, मेरे धर्म में आए हो, मेरा ये तुमको फरमान है, मेरे रूहानी बच्चे बने हो, रोज जमा खाने आओ, हक हलाल की मेहनत में से 10 मन माले वाजिबात दो, अमाल नेक करो, दगा फटका ना करो। मारा फरमाया फिर तुम अगर आसूदा नहीं बनो तो मुझे गर्दन से पकड़ो। हमारे तमाम दुख जो है उसके जोखमदार हम खुद हैं, मोमिनो हम खुद मोमिन समझते हैं, जानते हैं, इमाम जमान के फरमान सुनते हैं, लेकिन फिर हम बेदरकारी से और दुनिया की लालच में पड़ के हम मौला का दर छोड़ देते हैं, इसलिए हम दुख में पड़ जाते हैं। वो बच्चा जो माँ से दूर हट जाता है वो दुखी हो जाता है, लेकिन माँ की शरण में रहने वाला बच्चा हमेशा सुखी रहता है। ये मौलाना हजर इमाम का दरबार है, यहाँ हजर इमाम की संगत करो आके, और चालू अपने जीवन में भी नेक आदमियों की संगत करो, नेकों की संगत में रहो, अच्छे आदमियों की सोसाइटी में रहो, ये बदी बुराइयां छोड़ दो, ये हमारा काम नहीं। यूरोप की बदियां जो आ गई हैं हमारे जीवन में वो लानत है खुदा की, उनसे दूर रहो। यूरोप में जो अच्छी चीजें हैं हज़रत इमाम फरमाया तुम ले लो, उनका लिबास अच्छा है सब फरमाया कि तुम यूरोपियन लिबास पहनो, उनकी रहनी कहनी अच्छी है सब फरमाया तुम यूरोपियन ढंग की रहनी कहनी रखो, उनका खाना पीना नरिशमेंट वाला है इसी तरह सब फरमाया कि तुम नरिशमेंट वाली फूड खाओ, ऐसा खाना खुराक खाओ, फरमाया वो बच्चों को अच्छी तरह से रखते हैं, इस तरह तुम अपने बच्चों का उछेर भी उनसे सीखो, उनमें बहुत सी खूबियां हैं, इलम की खूबियां उनमें हैं, वो खूबियां तुम अपनाओ, उनमें इतना हसद नहीं, तब फरमाया तुम्हारे में ये चीज बहुत है, तुम इसको निकाल डालो। यूरोप के अंदर जो खूबियां हैं माँ बाप कहते हैं वो तुम खूबियां ले लो, उनकी बदियां बुराइयां छोड़ दो, और यूरोप में बदियां बुराइयां भी बहुत हैं, लेकिन हम लोगों ने उनकी बदियां ले ली और खूबियां छोड़ दी, शराब जुगार सिगरेट डांसिंग मौज शौक सिनेमा खराब खराब चौपड़ियां गंदी भूंदी फिल्में और गंदी भूंदी पिक्चरें, इन चीजों के अंदर हमारा पैसा हमारी तंदुरुस्ती हमारे विचार और हमारा रूहानी साइड सब की सब बर्बाद होती है। इस्माइली के लिए यह चीज वाजिब नहीं, दूसरों भला करते होंगे, क्रिश्चियन भला करते होंगे, दूसरे करते हैं भला करते होंगे, हमारा काम नहीं। हम हज़रत इमाम के मुरीद हैं, हम हज़रत इमाम के रूहानी बच्चे हैं, हम इस्माइली हैं, हम मोमिन हैं, हमारे आमाल हमारे विचार मौलाना हज़रत इमाम के फरमान के अधीन होने चाहिए। मोमिनों की संगत करो, मोमिनों की सोसाइटी में रहो, मोमिनों से तगपन करो, मोमिनों से लेती देती करो, मोमिनों